हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विधिक का कॉल आने के बाद अमन के रोकने पर भी लावण्या नहीं रुकी और वो सीधे एजेंसी ऑफिस जाकर ठहरी। अमन को भी मजबूरी में उसके पीछे आना पड़ा। लावण्या अमन से कुछ देर पहले पहुंची थी, इसलिए उसने सबकी मीटिंग अरेंज कर ली थी। मीटिंग शुरू हुई तब तक अमन भी आ चुका था। अमन ने देखा लावण्या ने अब तक किसी को विधिक के कॉल के बारे में नहीं बताया था। उसने लावण्या को इशारे से शांत रहने को कहा, लेकिन लावण्या ने जानबूझकर उसे इग्नोर किया। लावण्या ने वहां सबके आते ही तेज आवाज में कहा, शायद यहां कुछ लोग अपना फर्ज भूल गए हैं और अपने पर्सनल कामों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली। यहां मेरी बहन की भी डेड बॉडी पड़ी थी, लेकिन मैंने खुद को तसल्ली दी कि वो एक देशद्रोही थी, इसलिए उसकी नियति में मौत लिखी हुई थी। आई होप आप अब अपने पर्सनल इश्यूज को साइड में रखकर मेरी बात सुनेंगे, बोलते हुए लावण्या ने अमन की तरफ देखा। एक पल के लिए अमन को ऐसा लगा जैसे वो दिव्याना की मौत का बदला ले रही हो। लावण्या की बात सुनकर तेज प्रताप दत्त ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हारे वर्क डेडिकेशन की मैं हमेशा तारीफ करता हूँ। बताओ तुमने इस मीटिंग को क्यों बुलाया है और अचानक बीच में दिव्याना कहाँ से आ गई? लावण्या ने जवाब में कहा, अभी कुछ देर पहले अमन के पास विधिक राणा का कॉल आया था। वो आंशी को वापस अमन को सौंप रहा है और उसने दो दिन बाद अमन को मुंबई बुलाया है। क्या? मिस्टर दत्त हैरानी से बोले, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो आंशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और फिर अचानक वो खुद आंशी को अमन के पास छोड़ने क्यों आ रहा है? यही तो सवाल है सर, कि यहाँ कुछ लोगों को उस क्रिमिनल पर यकीन है। अमन को ये लगता है कि विधिक सुधर गया है। अचानक उसे सेल्फ रियलाइजेशन हो गया कि उसे आंशी को अमन से दूर नहीं करना चाहिए, इसलिए वो उसे छोड़ने के लिए खुद आ रहा है। साथ ही उसने ये भी कहा है कि वो पुलिस को साथ लेकर ना आए। मुझे तो ये एक सोची समझी चाल लगती है। वो अमन को फंसाना चाहता है। जब तक अमन जिंदा है, आंशी उसे कभी नहीं अपनाएगी, इसलिए वो अमन को करने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लावण्या ने एक सांस में बहुत कुछ बोल दिया। मिस्टर जिंदल अमन की तरफ देखकर बोले, लावण्या बिल्कुल ठीक कह रही है, वो उसकी कोई चाल ही होगी। आई होप मेरी बेटी ठीक हो, लेकिन हम पुलिस के साथ गए तो वो आंशी को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें विधिक पर यकीन करना ही होगा, जस ने जवाब दिया। वो इस मामले में पूरी तरह अमन के साथ था। अब सारा फैसला अमन पर ही था। मिस्टर दत्त ने अमन की तरफ देखकर पूछा, तुम इस मामले में क्या सोचते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें विधिक पर यकीन करना चाहिए। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, और मैं वहां अकेला ही जाऊंगा। विधिक के यहाँ से जाने के बाद कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हुई है, वो सब जगह से इनएक्टिव है। मैंने अपने सोर्सेस से भी पता किया था, उसके सारे इलीगल काम अचानक से गायब हो गए, अमन ने बताया। जैसा कि विधिक ने प्रॉमिस किया था, उसने आंशी के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, अब वो सिर्फ अपने लीगल काम संभालता था। लावण्या को लगा कि सब अमन की बात से सहमत हो रहे हैं, तब वो बीच में बोली, मैं इसकी बात से अग्री नहीं करती हूँ। बहुत मुश्किल से विधिक खुद चलकर हमारे जाल में फंसने को तैयार है, हम उसे आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? मैं तो कहती हूँ कि उसे मार देना चाहिए, उसी ने दिव्याना का दिमाग खराब किया था। मैंने कहा ना, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मैं आंशी को लेने अकेला जाऊंगा। अगर मुझे कोई गड़बड़ लगी तो फिर मैं बैकअप बुला लूंगा। आई होप आप सब मेरी बात को समझेंगे। फिलहाल हमारे लिए आंशी की जान ज्यादा जरूरी है, ना कि विधिक को पकड़ना। वैसे भी आंशी को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने वाला, क्योंकि विधिक हर काम सफाई से करता है। ऐसे लगता है उसने सब कुछ पहले से ही तैयार कर रखा था। जैसे ही आंशी उसके पास आई, उसने अपने सारे इलीगल कामों को बंद कर दिया, उनके सबूत तक मिटा दिए, तो फिर आंशी को कहाँ से कोई सबूत मिलेगा? अमन गुस्से में थोड़ी तेज आवाज में बोला। मैं अमन की बात से सहमत हूँ, मिस्टर गुप्ता ने उसका साथ देते हुए कहा। जस और मिस्टर दत्त भी अमन के ही साथ थे, लेकिन लावण्या और मिस्टर जिंदल विधिक पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी टीम के हेड मिस्टर दत्त थे और सेकंड हैंड अमन, उन दोनों का एक डिसीजन होने की वजह से वो दोनों कुछ नहीं कर पाए। मिस्टर दत्त ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, आंशी को लाने के लिए सिर्फ अमन ही जाएगा। जैसा कि उसने कहा कि उसे अगर किसी तरह के बैकअप की जरूरत होगी तो वो मंगा लेगा। आई होप अब इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। मिस्टर दत्त के फैसले के साथ ही ये मीटिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी भी मिस्टर जिंदल और लावण्या वहीं पर बैठे हुए थे। क्या लगता है मिस्टर जिंदल, आप अपनी बेटी को आसानी से जाने दोगे? मिस्टर जिंदल की कमजोरी का फायदा उठाते हुए लावण्या ने धीमी आवाज में पूछा। बिल्कुल नहीं, हम अमन के साथ जाएंगे और छुपकर सब कुछ देखेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो उस क्रिमिनल को गोली मारने से भी मेरे हाथ नहीं कांपेंगे, मिस्टर जिंदल ने गुस्से में जवाब दिया और वहां से चले गए। मिस्टर जिंदल का रवैया देखकर लावण्या के चेहरे पर स्माइल थी। उसने धीरे से कहा, आपसे पहले मेरी गोली उसे शूट करेगी, चाहे वो किसी भी इरादे से यहाँ आया हो। लावण्या वहां बैठकर प्लानिंग करने लगी कि उसे किस तरह विधिक को उस वक्त गोली मारनी है जब वो आंशी को अमन को सौंप देगा।